खंड दो, रंग से शास्त्र तक, नजीर के नजरिए पर। नजीर अकबरावादी का आगरा अनेक दृष्टियों से भारतीय संस्कृति और साहित्य के ऐसे दौर का दस्तावेज है जिसमें अपने भूगोल और इतिहास, समाज और धर्म, आस्था और कुंठाओं से जूझते जनसामान्य का जीवन चित्रण उपलब्ध है। यह ऐसे संक्रमण काल की व्यथा कथा है जिसने आने वाले समय के भारतीय मूल्यों को नया आधार और नूतन संबल प्रदान किया है। आश्चर्य की बात है कि 19वीं शताब्दी के छोटे से आगरा की प्रतिछायाएं 20वीं शताब्दी के संपूर्ण भारत पर परिलक्षित होती जान पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि नजीर के समय से पहले हमारे देश ने इस तरह के संक्रमण का सामना न किया, लेकिन 17वीं शताब्दी तक आते आते वे सभी भारतीय मूल्य धराशायी होने लगे थे जो अकबर की समन्वयवादी दृष्टि से उद्भूत होकर शाहजहां के समय तक धीरे धीरे आकार ग्रहण करने लगे थे। लेकिन उसके बाद हमारे देश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र नादिर शाह और फिर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों, नरसंहार तथा लूटपाट से पूरी तरह छद विछद हो चुका था। दिल्ली और आगरा के आसपास का पूरा क्षेत्र अराजकता, शोषण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और धार्मिक असहिष्णुता के कारण भय और असुरक्षा के आतंक से भयंकर रूप से संत्रस्त और संतप्त था। इसी भय और असुरक्षा की गहरी भावना और विगत अनुभवों ने उस समय की हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों में भाईचारे और प्यार मोहब्बत के बीच फिर से बो दिए। हिंसा और नफरत की आग में झुलसे जनमानस को जिस राहत और सुकून की तलाश थी उसके लिए सिर्फ यही एक मात्र राह बची थी। उस समय के वातावरण के संबंध में प्रोफेसर मोहम्मद उमर के शब्द, मुस्लिम जनता और दिल्ली के शासक वास्तविकता से परिचित थे। वे लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि बिना जनता के सहयोग के हुकूमत नहीं की जा सकती, इसीलिए उन्होंने हिंदुओं के साथ नरमी और मजहबी सामंजस्य की प्रवृत्ति अपनाई। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना से पूर्व तक के हमारे विश्रृंखलित समाज पर पड़ा और गहरे स्तर पर समन्वयवादी संस्कृति की जड़ें मजबूत हुई। इस संबंध में प्रोफेसर उमर ने इसी लेख में आगे कहा, हिंदुओं और मुसलमानों में एकता और आत्मीयता के विकास के परिणाम स्वरूप एक विशेष संस्कृति के स्वरूप का जन्म हुआ जो न तो शुद्ध मुस्लिम कल्चर था और न उसे शुद्ध हिंदू कल्चर ही कहा जा सकता है, बल्कि यह व्यापक हिंदू मुस्लिम कल्चर था। इस कल्चर में दोनों ही कौमों के जीवन की हर दिशा प्रभावित हुई थी और जीवन संस्कृति के इसी रूप में रम गया। नजीर अकबरावादी का रचना काल 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का है। हर दृष्टि से यह काल समन्वयवादी भावना और धार्मिक सहिष्णुता का काल था, किंतु इसी समय हिंदू और मुस्लिम रियासतें पूरी तरह अय्याशी में डूबी हुई थी। तीतर बटेर और मुर्गों की लड़ाइयाँ, पतंगबाजी, कबूतरबाजी उनके सबसे बड़े शौक थे और जनसामान्य के आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। कोठों पर रईसों की बैठकों में गाने और नाच की महफिलें जमती थीं। अमीर और उमरा उनके बड़े सरपरस्त थे। उस दौर की शायरी भी हुस्न और शराब के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी, लेकिन कमोवेश यही वक्त मीर हाली और गालिफ का भी है। इश्को हुस्न की बहती हुई दरिया के तटों पर इबादत के कमल भी खिलने लगे थे। उर्दू के शायरों का गहरा असर हिंदी की कवियों पर भी पड़ा और हिंदी साहित्य में रीतिकालीन श्रृंगार प्रधान रचनाओं को प्रमुखता मिलने लगी। शब्दों के कलात्मक प्रयोग, अलंकार और अंदाजे बयां उमदा शायरी का सबसे बड़ा मरकज था। इस ऊंचे दर्जे की शायरी से आम आदमी लगभग उतना ही दूर था जितना कि आज है। शायरी और शायरा अंदाज एक खास किस्म की नफासत और नज़ाकत की मांग कर रहा था। विशुद्ध साहित्यिक दृष्टि से वह समय उर्दू अदब के चरमोत्कर्ष का काल था, लेकिन नजीर की शायरी में नफासत और नज़ाकत उस वक्त में नजर नहीं आती जो तत्कालीन सभ्य समाज की आन बान और शान की कसौटी थी। उनकी शख्सियत, रहने सहने का ढंग और अवामी जिंदगी के प्रति उनका नज़रिया बेतकल्लुफी और सहजता से भरपूर था। यही गुण उनकी शायरी में भी आईन है। उन्होंने साहित्य की स्थापित मान्यताओं को सिरे से खारिज कर दिया और अपने मुहावरे को गढ़ने के लिए लोक में व्याप्त उस धड़कन से रूबरू हुए जो अदब और अदीबों की दुनिया में हाशिए पर डाल दिए गए थे। लेकिन नजीर की नज़र में हाशिए पर पड़ी यह जिंदगी ही उनके वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई थी जिससे उन्हें बे इंतहा मोहब्बत थी। नतीजन उनके समय के अदीबों ने उनकी शायरी को खत्ई कोई अहमियत नहीं दी, उससे एक महज एक तुकबंदी कहकर टाल दिया गया। लेकिन उस वक्त के अमाम ने उन्हें और उनकी शायरी को सिर आंखों पर बिठाया और ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जो किसी भी शायर के लिए स्प्रेहा का कारण हो सकता है। हबीब तनवीर ने एक बातचीत के दौरान इस संबंध में कहा, नजीर के जीते जी उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था तथा उनकी रचनाओं को भाषा के कट्टर लोगों द्वारा नकार दिया गया था, परंतु हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि पंडितों यानी अदीबों ने उनकी रचनाओं कविताओं को गैर पारंपरिक कहा, पर जनसामान्य ने इन्हें रचनाओं को अपने दिल से लगाया और गली कूचों में गाते फिरे। आज भी स्थिति बदली नहीं है। नज़ीर की शायरी के अल्फाज और रूहे जिंदगानी सजे सवरे अंदाज में नजर नहीं आते। उनकी पोशाकें चटकीले भड़कीले रूप अलंकार तथा आकर्षक साज सज्जा से विहीन है। वे शाही सवारी के लवाजमे की तरह कायदे के कठोर अनुशासन में निबद्ध नहीं है। चकाचौंध पैदा कर देने वाले रत्न जटित सौंदर्य से उनका कोई रिश्ता नहीं। उनकी शायरी के बिंब जिंदगी के अपार हर्षोल्लास के मेले की तरह हैं, जहां लोक के उन्मुक्त खिलखिलाहट है, नृत्य और संगीत की अजस भावधारा है, अनगढ़ और सहज मन की मनोहारी मुद्राएं हैं और भंगिमाएं हैं, बंधनहीन उच्छ्वास है, धरती का सौंधापन है, वन फूलों की खुशबू है, आकाश आसीम आनंद है। नज़ीर उत्सव के शायर नज़ीर जीवन के उत्सव के शायर हैं, जहां उनके शोकाकुल भाव भी नास्ती गाती मुद्राओं में कंधों का सहारा लेकर एक व्यापक आनंद लोक का अटूट हिस्सा बन जाते हैं, जहां मजहबी कट्टरता स्वार्थ फरीब कुटिलता ईर्ष्या द्वेष उल्लास और करुणा भूख और जिजीविषा संकल्प और निष्ठा एक साथ स्वर से स्वर मिलाकर फूट पड़े हैं। डॉक्टर एहतिशाम हुसैन के शब्दों में, उस शुष्क और उजाड़ संगम पर आकर नज़ीर ने अजान भी दी और शंख भी फूका, तस्बीह भी ली और जनेऊ भी पहना, मुहर्रम में रोए तो होली में भड़वे भी होने, रमजान में रोजे रखे और सलूनों पर राखी बांधने को मचल पड़े, शब बरात पर मेहताबियाँ छोड़ी तो दिवाली पर दीप जलाए, नबी वली पैर पीर पैगंबर के लिए जी भर कर लिखा तो कृष्ण महादेव नरसी भैर और नानक पर भी श्रद्धांजलियाँ चढ़ाई, गुलू बुलबुल पर कहा तो आम और कोयल को पहले याद रखा, पर्दे के साथ बसंती साड़ी भी याद रही, और तो और गर्मी बरसात और सर्दी पर भी लिखा, बच्चों के लिए रीछ का बच्चा कौआ और हिरण गिलहरी का बच्चा तरबूज पतंगबाजी बुलबुलों की लड़ाई ककड़ी तैराकी तिल के लड्डू पर लिखने बैठे तो बच्चे बन गए, हर एक बालक गली कूचों में गाता फिर रहा है, जवानों और बूढ़ों की नसीहत देने बैठे तो लोग वज्द में आ गए, मानो कुरान हदीस वेद गीता उपनिषद पुराण सब घोल कर पी जाने वाला कोई सिद्ध पुरुष बोल रहा है। इस सिद्ध पुरुष की एक बड़ी विशेषता थी विषय के अनुसार ही उसके लिए माकूल अल्फाज का चुनाव। हमद के एक बंद के अल्फाज इस तरह है, इलाही तू फयाज है और करीम, इलाही तू गफ्फार है और रहीम, मकदस मुअल्ला मुनज्जा अजीम, न तेरा शौक और न तेरा सहीम, तेरी जात वाला है यख्ता खजीम। और दूसरी तरफ भगवान शंकर के विवाह का वर्णन करते हुए वे अपनी नज़्म महादेव का ब्याह की शुरुआत इस तरह करते हैं, पहले नाम गणेश का लीजे शीश नवाए, जासे कारज सिद्ध हो सदा मुहूर्त लाए, बोल वचन आनंद के प्रेम प्रीत और चाह, सुन लो धरो ध्यान धर महादेव का ब्याह। नज़ीर की शायरी का यह पक्ष बहुत प्रबल है, इसीलिए उनकी नज़में जन जन की सुबान पर अनायास चढ़ गई और अत्यंत लोकप्रिय हुई हैं। लेकिन इस सबसे अधिक प्रबल पक्ष नज़ीर की मानवतावादी नज़रिए का है। नज़ीर की शायरी के केंद्र में वह आदमी है जो हर हालत में शोषण का शिकार है। उसे टूटे और हारे हुए आदमी को नई ताकत देने की विषाक्तता कोशिश उनकी शायरी का मकसद है। उनकी नज़्म मंजारनामा में अय्याशी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध एक जंग सी नजर आती है। उसका तंज बड़ा गहरा है और मार बड़ी बारीक। मगरूर न हो तलवारों पर मत भूल भरोसे ढालों के, सब पत्ता तोड़ के भागेंगे मुंह देख और अजल के भालों के, क्या डिब्बे हीरे मोती के, क्या ढेर खजाने मालों के, क्या बगुचे ताश मुशज्जर के, क्या तख्ते शाल दुशालों के, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा। इंसान और इंसानियत के अलमदार नज़ीर की शायरी में गरीब की आह, खाली पेट की बदहाली, मुफलिशी की मार और दीन के पुकार का बेडौस इजहार हुआ है। लेकिन वह हताशा और निराशा के अंधेरी पगडंडियों पर नहीं भटकती न भटकाती, उनका जश्न मनाती है। उनकी नज्म रोटियाँ की कुछ पंक्तियाँ, जब आदमी की पेट में आती हैं रोटियाँ, फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियाँ, आंखें परी रूखों से लड़ाती हैं रोटियाँ, सीने ऊपर भी हाथ चलाती हैं रोटियां। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, ये महरूमा हक ने बनाए हैं काहे के। वे सुन के बोला, बाबा तुझको खैर दें, हम तो चांद समझे न सूरज हैं जानते, बाबा हमें ये तो नजर आती हैं रोटियां। नजीर की शायरी में उस समय के आगरा का चित्रण इतना सजीव और सच्चा है कि ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण की तरह भी पेश किया जा सकता है। मुगलिया सल्तनत के पतन के साथ नवाबों और राजाओं के सरपरस्ती उठ जाने से बेहाल कलाकार, शिल्पकार, संगीतकार, नर्तक और नर्तकी, हकीम, नक्काश आदि सबका बुरा हाल था। उनकी नज्म मुफलिसी में उस पीड़ा का उत्सव है। जब मुफलिसी से रोवे कलावंत का दिल उदास, फिरता है ले तंबूरे को हर घर के आसपास, एक पांव शेर आटे की दिल में लगा के आस, गोरी का वक्त होवे तो गाता है वो विभास, यहाँ तक हवास उसके उड़ाती है मुफलिसी। नजीर अपने मानवतावादी नजरिए को पुष्ट करने के लिए किसी बड़े सियासी फलसफे या राजनीतिक सिद्धांतों का सहारा नहीं लेते। वे उबड़ खाबड़ कंकड़ीले पथरीले झाड़ झंखाड़ों के बीच से गुजरती पगडंडियों पर नंगे पांव सफर करती मानवता के पांव में चुभे कांटों का हिस्सा से निकालकर हमदर्दी का मरहम लगा देती है। और वो लौलुहान पांव देखते ही देखते घुंघरू बांधकर मस्ती भरा नाच नाचने लगते हैं। उनकी प्रसिद्ध नज्म आदमीनामा इसका बेजोड़ नमूना है। मस्जिद में आदमी ने बनाई हाँ याम यां, बनते हैं आदमी ही इनाम और खुद बखां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमजियां, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां, जो उनको ताड़ता है सो वह भी आदमी। नजीर के मानवतावाद की सबसे बड़ी खसूसियत है कि मुकम्मल इंसानी फितरत, उसकी हिम्मत और कुव्वत, उपेक्षा और अपेक्षा, सिहरन और धड़कन, सूरत और सीरत, नियत और बदनीयत को उन्होंने तहे दिल से अपनाया और हर कमजोरी के बावजूद इंसानी वजूद पर अपनी अटूट आस्था दिखाई। इसी नज्म का एक और बंद है, हैरान हूँ यारों देखो तो ये क्या सुअंग है, या आदमी ही चोर है और आप ही थांग है छीना छपटी और कहीं बांग तांग है, देखो तो आदमी ही यहाँ मिसले रंग है, औलाद से गढ़ा है सो है वह भी आदमी। शायद यही वो खूबियां हैं जिन्हें हबीब तनवीर ने एक नए अंदाज में पढ़ा और सराहा। सच तो यह है कि नजीर अकबरआबादी की शायरी की खसूसियत हबीब तनवीर के रंगकर्म की खसूसियत भी है। हबीब के सांस्कृतिक चेतना, धर्म का मजहब के बारे में उनके ख्याल, आम आदमी के दुख दर्द, हंसी खुशी में उनकी भागीदारी, तीज त्योहारों और मौज मस्ती के क्षणों में जमकर आनंद लेना इत्यादि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हबीब तनवीर के रंगकर्म और नजीर की शायरी में यकसा नजर आती हैं। नजीर का नजरिया हबीब तनवीर के रंगकर्म का नजरिया है। शायद यही वजह थी कि हबीब तनवीर ने नजीर अकबरआबादी की शायरी में अपने ही ख्यालात नजरिए का अक्ष पाया। एक बात और, नजीर का समय भी राजनीतिक संकट का समय था। आम आदमी के बीच हताशा, कुंठा और असमंजस की स्थिति थी। नजीर का समय आम आदमी के शोषण का ऐसा समय था जब शोषित की सुनवाई भी मुमकिन नहीं थी। हबीब तनवीर ने आज के हालात में आम आदमी के अनास्था और कुंठा को और साथ ही उसकी अंदरूनी ताकत को पढ़ा और नजीर की शायरी के माध्यम से उसमें आस्था, उल्लास और जिंदगी के प्रति एक नए विश्वास को जन्म देने का रास्ता ढूंढ निकाला। कहा जा सकता है कि नजीर अकबरआबादी की शायरी के जरिए हबीब तनवीर ने अपने ही दिल की बात कही है और उसी अंदाज में जो नजीर का ही अंदाज था। नजीर अकबरआबादी के नजरिए पर हबीब तनवीर की नज़र ने एक ऐसा मुकाम ढूंढ निकाला जहाँ नजीर और हबीब समय के लंबे अंतराल के बावजूद एक ही जमीन पर खड़े नजर आते हैं। शायद यही वजह थी कि योम नजीर के लिए तैयार किया हुआ एक छोटा सा रूपक हबीब तनवीर के दिली दिमाग में पूरी तरह रच बस गया और वह उसके एक साथ एकाकार हो गई। यदि हम आगरा बाजार की प्रस्तुति के आरंभिक चरणों को गौर से देखें तो यह बात और साफ हो जाती है। बात सन 1954 की है। उनके मित्र अथर परवेज, जो कि खुद कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे, कई मायनों में उनके सहयोगी और सहकर्मी थे। अथर परवेज खुद लेखक थे और शायरी के शौकीन थे। उन दिनों वे योम नज़ीर मनाने की तैयारी कर रहे थे और उन्हें हबीब तनवीर से गुजारिश की कि नज़ीर अकबरआबादी की शायरी पर आधारित एक 15-20 मिनट का रूपक तैयार करें जिसे उस मौके पर मंजित किया जाए। दिल्ली आने पर हबीब साहब के रंगकर्म का यह पहला पड़ाव था। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ लड़कों, अध्यापकों और पास के गाँव ओखला के कुछ लोगों को लेकर उन्होंने इस रूपक का पूर्वाभ्यास किया जो अंततः आगरा बाजार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया के लड़कों और प्राध्यापकों के साथ शायद नजीर की शायरी खुलकर सामने नहीं आ रही थी, इसीलिए हबीब तनवीर ने ओखला गांव के कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा। गांव के लोगों को उन्मुक्त, बेझिझक और स्वाभाविक तौर तरीकों से नज़ीर की शायरी का स्वाभाविक रंग खिलने लगा और माहौल पूरी तरह जिंदा हो गया। गांव की औरतों के खुले गले की गायकी और उनका सहज और स्वाभाविक लहजा हबीब तनवीर के मन को बहुत भाया। यही वो जीवंतता थी जिसे देखकर बेगम कुदसिया जैदी और बेगम अनीस किदवई ने उसे मुक्त मन से सराहा। आगरा बाजार में कोई नाटकीय कथानक नहीं था। हबीब तनवीर ने एक ककड़ी बेचने वाले की गिर्द पूरा वातावरण रचा था जिसकी ककड़ियाँ कोई नहीं खरीदता। वह अनेक प्रयत्न करने के बाद नज़ीर अकबरवादे की एक कविता का सहारा लेता है और नज़ीर की कविता के माध्यम से उसकी ककड़ियाँ धड़ाधड़ बिकने लगती हैं। नज़ीर की जिंदगी की सच्ची घटना है जिसका जिक्र अनेक स्थलों पर मिलता है। ककड़ी नज़्म की कुछ पंक्तियाँ। क्या प्यारी प्यारी मीठी और पतली पतलियाँ हैं, गन्ने की पूरियाँ हैं, रेशम की तकलियाँ हैं, फरहाद की निगाहें शीरी की हंसलियाँ हैं, मजनू की सरदयाँ हैं, लैला की उंगलियाँ हैं, क्या खूब नर्म नाजुक इस आगरे की ककड़ी और जिसमें खास कादिर इस्कंदरे की ककड़ी। देखा जाए तो यह कोई स्थापित मान्यताओं के अनुसार नाटकीय कथानक नहीं था। दर्शकों को आनंद आया, विरस विभोर हुए, लेकिन उसे इसे मात्र दिलचस्प प्रयोग कहकर टाल देने की कोशिश की गई। कुछ संतुलित विचार वाले समीक्षकों ने आगरा बाजार को इस तरह नहीं नकारा, लेकिन अधिकांश समीक्षक इसे नाटक स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अनेक समीक्षकों ने नो थीम, नो प्लाट या कथानक विहीन नाटक जैसी संज्ञाएं देकर इसे नाटक मानने तक से इनकार कर दिया। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि उस समय हमारे देश के अधिकांश समीक्षक पाश्चात्य नाटक अवधारणाओं के अतिरिक्त और कुछ स्वीकारने को तैयार नहीं थे। उनका समीक्षा संबंधी मानदंड यथार्थवादी नाटक पर ही आश्रित थे, जिसमें चरित्रों का अंतर्द्वंद, कथा में अप्रत्याशित मोड़, मिलन, विरह या संघर्ष की स्थितियां नाटक के अनिवार्य तत्व के रूप में मौजूद होने चाहिए। भले ही उनकी संख्या अंगुलियों पर गिनने जाने लायक भी नहीं थी, फिर भी कुछ शीर्षस्थ समीक्षकों ने इसे सही संदर्भ में प्रस्तुत करने की कोशिश की। नो प्लाट, नो थीम जैसी टिप्पणियों से एकदम परे हटकर उन्होंने इस प्रस्तुति में उन तत्वों को अंकुरित होते देखा जो हमारी नाटक परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता थी, लेकिन आधुनिक काल में पूरी तरह हाशिए पर चली गई थी। सबसे बड़ी बात थी कि इसकी अभिनय पद्धति, जो पूरी तरह स्थापित और मान्य यथार्थवादी पद्धति को अंगूठा दिखाती जान पड़ती थी, वह प्रस्तुति अपने समय के सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब नहीं थी बल्कि उसका अंग थी। अभिनेता और दर्शक उसमें एकाकार हो गए थे और मंच के दर्शक के बीच की कृत्रिम तथा असहज दूरी एकदम तिरोहित हो गई थी। भारतीय रंगमंच पर यह नया मुहावरा पहली बार अपने शिद्दत के साथ उभरा। उस प्रस्तुति के अनुभवों की याद ताजा करते हुए डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने लिखा, मोटे तौर पर हिंदी में इस नए मुहावरे की शुरुआत 1954 में हबीब तनवीर द्वारा लिखित और निर्देशित आगरा बाजार से होती है। मेरी पीढ़ी के जिन लोगों ने यह प्रदर्शन देखा है उनको काव्य और संगीत से मुखरित उल्लसित उस प्रदर्शन की नितांत कई नई नाट्य संवेदना आज भी याद है। रंगमंच के प्रचलित यथार्थवादी मुहावरे के संदर्भ में यह प्रदर्शन बिल्कुल भिन्न था, फिर भी बहुत सहज और परिचित लगा। एक ही प्रदर्शन में जैसे यथार्थवादी रंगमंच की सभी रूढ़ियां और व्यवहार अपरिचित और विजातीय लगने लगे और नाटक प्रदर्शन के साथ दर्शकों की साझेदारी हो गई। यह बात और है कि यथार्थवादी पश्चिमी नाट्य पद्धति के दावेदार आगरा बाजार को नाटक ही न मानेंगे। लेकिन आगरा बाजार ने केवल हिंदी रंगमंच पर ही नहीं बल्कि भारतीय रंगमंच पर भी एक जबरदस्त हलचल पैदा की। प्रस्तुति के इस नितांत नए अनुभव को अस्वीकार तो किसी ने नहीं किया, लेकिन नाटक के बुनियादी तत्वों को लेकर एक नई बहस की शुरुआत हो गई। उस समय इस नई बहस के तीन बड़े मुकाम थे। आगरा बाजार के अलावा अन्य दो बड़े मुकाम थे, शंभू मित्र का रक्त करबी और दीना पाठक का मैना गुर्जरी। उस समय इन तीनों नाटकों के सम्मिलित प्रभाव की चर्चा करते हुए हबीब तनवीर ने लिखा, जिस जमाने में अहमदाबाद के मंडल की तरफ से दिल्ली में मैन गुजरी हुआ, उसी जमाने में कलकत्ता के बहुरूपी की तरफ से शंभू मित्र ने रक्त कर भी पेश किया और उसी जमाने में मैंने अपनी नई रचना आगरा बाजार पेश की। यहाँ इन तीनों नाटकों का मुकाबला करना मकसद नहीं है। जाहिर है कि ये तीनों अपने ढंग की बिल्कुल अलग अलग प्रस्तुतियाँ थीं। काबिले जिक्र बात यह है कि कविता, गीत और संवाद, इनका मिलाप तीनों नाटकों में था। गरज ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो थिएटर के सामने इस नए ढंग के नए नए रास्ते खुद ब खुद खुल रहे थे। लेकिन आगरा बाजार की कथा इन दोनों परिस्थितियों से निराली थी। रक्त करबी और मैना गुर्जरी का सशक्त और सुगठित कथानक उन्हें एक दूसरा धरातल प्रदान करता था। आगरा बाजार में इस तरह की कोई जमीन नहीं थी। छोटे छोटे प्रसंगों में बुने हुए इस नाटक का नायक उस समय का वातावरण था। कोई चरित्र विशेष नहीं। धीरे धीरे वह वातावरण जीवंत होता हुआ सभी प्रेक्षकों को अपने दायरे में बांध लेता है। वह अमूर्त वातावरण देहातीत होते हुए भी जैसे साकार होता है। अभिनय की सहजता और अकृत्रिमता, गीतों और नृत्यों की भंगिमाओं के द्वारा आगरा बाजार जिस अनुभव को संप्रेषित करता था उसे व्याख्यायित करना बहुत कठिन है। इन तीनों नाटकों की प्रस्तुतियों में कोई समानता नजर नहीं आती, फिर भी इन प्रस्तुतियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इन्होंने पाश्चात्य नाट्य अवधारणाओं को पहली बार चुनौती दी और अपनी जमीन से उगे नाट्य मुहावरे की कलात्मक शक्ति का पहली बार एक साथ परिचय दिया। लगभग 50 वर्ष पूर्व और आज की स्थितियों में जबरदस्त बदलाव आ चुका है। विश्व के अनेक विकसित देशों में कथहीन या आलेख रहित प्रस्तुतियों को लेकर अनेकानेक प्रयोग हो रहे हैं। उत्तर आधुनिकतावादियों ने इस दिशा में बड़ी पहल की है। हमारे देश में भी नाटक की पूर्व परिभाषा खंडित हो चुकी है। कलात्मकता के परख के लिए नए मानदंड स्थापित हो रहे हैं, लेकिन आज से 50 वर्ष पूर्व का वह प्रयोग उस समय के समीक्षकों के लिए एक अजीब किस्म की बेचैनी पैदा कर देने वाला था। आगरा बाजार को नाटक कैसे कहें, लेकिन इस अनुभव को अनाटकीय भी तो नहीं कहा जा सकता। श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल ने इस अनुभव को इस तरह व्यक्त किया। आगरा बाजार नाटक था भी और नहीं भी। छोटे छोटे किस्सों और घटनाओं को जोड़कर नाटक बनाया गया था। कहीं यह प्रयत्न नाटकीय बन पाया था, कहीं नहीं। कहीं नज़ीर अकबरबादी की कविता नाटक की गति को आगे बढ़ाती थी तो कहीं उसकी गहनता गति को अवरुद्ध करती थी, विशेषकर उत्तरार्ध में। लेकिन सब मिलाकर प्रयत्न सराहनीय था और असंख्य दर्शकों ने सराहा भी। आगरा बाजार एक छोटे से रूपक से बढ़कर एक पूरा नाटक बन जाने का प्रसंग भी कम दिलचस्प नहीं। स्वयं हबीब तनवीर के शब्दों, पहले यह नाटक छात्रों और शिक्षकों के साथ किया गया और पड़ोस के ओखला गांव वाले आकर बैठते और उस मुक्ताकाशी खुले रंगमंच पर रिहर्सल देखते। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि दूर से रिहर्सल देखने के बजाय वे मंच पर आकर बैठ सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि भालू का नाच हो रहा है, कभी बंदर का तमाशा हो रहा है। इन्होंने वही किया और इस तरह वे भी नाटक का हिस्सा बन गए। इस तरह वहाँ 70 से भी अधिक लोग हो गए जो रामलीला मैदान में आए, जिनमें गधे के साथ एक कुम्हार भी शामिल था और गधे ने वहाँ लीद भी कर दी। तो इससे यथार्थ वहाँ अपने चरम में अभिव्यक्त हुआ बाजार के अपनी खास गंधों के साथ। और तब मैंने नाटक में अधिक से अधिक सूक्ष्म अर्थ छटाओं का समावेश करते हुए इसे दोबारा लिखा। उसमें कोठा प्रस्तुत किया गया, एक गुंडा भी जोड़ा गया, वेश्याओं और पुलिस इंस्पेक्टर को भी शामिल किया गया। पहले शुरुआत में वह एक कंकाल नुमा ढांचा था, फिर वह पूरे 2 घंटे के वृत्तांत में विकसित हो गया, जिसमें नज़ीर के बारे में बातचीत होती है। उसकी उपस्थिति यहाँ वहाँ सभी जगह है, लेकिन वह स्वयं रंगमंच पर कभी नहीं आता। नाटक से प्रभावित होकर दिल्ली की अनीस किदवई और बेगम जैदी जैसे कुछ महिलाओं ने उसे उठाया और हम लोग उसे अलीगढ़ ले गए। इस तरह वो आगे और आगे चलता गया। मैं सोचता हूँ कि 1954 तक आगरा बाजार से मैंने अपने आप को स्थापित कर लिया था। हबीब तनवीर को आगरा बाजार से इतनी ख्याति मिली कि वही नाटक संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार का सबसे बड़ा सबब बना। 1970 से पहले यद्यपि वे मिट्टी की गाड़ी, शुद्रक के मृच्छकटिक का अनुवाद, 7 पैसे, जालीदार पर्दे, फांसी, मिर्जा शोहरत बेग, रुस्तम सोहराब आदि हिंदी के नाट्य प्रस्तुतियों के अतिरिक्त अंग्रेजी में ए गुड पर्सन ऑफ सेजुआन वेस्ट, ए सिग्नेट रिंग ऑफ राक्षस, विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस, द शुमेकर्स प्रोडिजियस वाइफ लोरका, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट ऑस्कर वाइल्ड, टेमिंग ऑफ द श्रू शेक्सपियर, सर्वेंट ऑफ टू द मास्टर्स गुल्डोनी आदि अनेक नाटकों का निर्देशन और प्रस्तुतिकरण कर चुके थे। इनमें से अधिकांश नाटकों में हबीब तनवीर ने विभिन्न भूमिकाएं भी निभाई थी, लेकिन आगरा बाजार की प्रस्तुति ने उन्हें समकालीन भारतीय निर्देशकों की पहली पंक्ति में स्थापित कर दिया। आगरा बाजार की पहली प्रस्तुति के बाद अपने 15 वर्षों के रंगमंची प्रयोगात्मक अध्ययन और विवेचन से सार ग्रहण करते हुए उन्होंने इस नाटक के नाट्य लेख में फिर से अनेक संशोधन और परिवर्तन किए। इस सब का असर यह हुआ कि 1970 के आगरा बाजार के नाट्य लेख और प्रस्तुति में मूल नाटक तो वही रहा, वही कथ्य और वही दृष्टि, लेकिन उसे व्यक्त करने का अंदाज ज़्यादा असरदार हो गया। नज़ीर की शायरी की मरक्ष साहित्यिक जगत में उस वक्त के बेहद चर्चित शायरों की शायरी का नया अंदाज पेश करने के इरादे से एक किताब की दुकान जोड़ा गया। उस दुकान पर अदीबों की गुफ्तगू उस नाटक का एक अहम हिस्सा बन गई। कातिब की दुकान पर आने वाले अदीबों के ख्यालात उस वक्त के अदबी माहौल को पूरा असर तरीके से पेश करने में नहायत कामयाब रहे। इसलिए नफीस उर्दू बोलने वाले कुछ चरित्र भी जोड़ दिए गए। उनके संवादों से अनायास से जाहिर हो गया कि उस वक्त के अदीब उर्दू अदब के बारे में क्या ख्यालात रखते थे। दूसरी तरफ एक पतंगों की दुकान, इस पतंग पर उस वक्त के शौकीन लोगों की पसंद का इजहार खुले तौर पर हुआ। नज़ीर ने अपने वक्त की पतंगबाजी के बारे में जो नज़्म कही है उसे संवाद के रूप में ढाल दिया गया। पतंगों की ऐसी ऐसी किस्में जो शायद आज के लोगों के लिए फ़कत एक दिलचस्पी का बायस भर रह गई हों, इस पतंग की दुकान पर जीवंत हो जाती हैं। उस वक्त के पतंगबाजों, बटेरबाजों, कबूतरबाजों को पसंदीदा शौक इस दुकान पर आने वाले लोगों की गुफ्तगू से जाहिर हुए। तीसरी तरफ मंच के ठीक सामने और पीछे की ओर बाई जी का कोठा, उस वक्त वेश्याओं के कोठों पर संगीत सुनने वालों की हवस का प्रतीक। उस वक्त अय्याशी में डूबे लोगों और उनकी मानसिकता को दर्शाने वाले कुछ दृश्य, जिनमें कोठों पर होने वाली आम झड़पों का चित्र, साथ में एक पुलिस इंस्पेक्टर जो उस वक्त के कानूनी दावपेच का दस्तावेज प्रस्तुत करता है, और इस सबके बीच यानी मंच के सबसे अहम हिस्से में आम आदमी की जिंदगी, इन सबसे बेखबर लेकिन इन परिस्थितियों के बीच जीने की लिए अभिशप्त, अपनी रोजी रोटी और जिंदा रहने की कोशिश से जूझता आम आदमी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब पर टिप्पणी करती हुई फकीरों की टोली जो अपने एक खास अंदाज में गायकी के जरिए इंसान की फितरतों पर टीका करते हुए चलती है। बाई जी के कोठे पर गाए जाने वाले गजल के लिए हबीब तनवीर ने मीर की ये गजल सुनी और फकीरों के लिए नज़ीर अकबादी का नज्म आदमी नामा के लिए कुछ चुनिंदा बंद लिए। मुख्तसर में आगरा बाजार की प्रस्तुति कथानकहीन होते हुए भी एक ऐसे कथानक को मुकम्मल तौर पर पेश करने वाली सिद्ध हुई जैसी भारतीय रंगमंच पर पहले कभी संभव नहीं हुई थी। एक पुराने बीते हुए वक्त की ऐसी जिंदा तस्वीर जो दर्शकों पर भरपूर मनोरंजन भी करे और साथ ही सोचने समझने के लिए विवश भी। बर्तुल्त ब्रेस्ट के नाटकों की तरह आगरा बाजार की इस खसूसियत के नज़रिए से अनेक समीक्षकों ने यह कहा कि आगरा बाजार ब्रेस्ट की अवधारणाओं का भारतीयकरण है। लिंक के प्रतिनिधि से हुए साक्षात्कार में हबीब तनवीर ने दो टूक शब्दों में इस बारे में कहा, मेरा सोचना है कि यहाँ किसी किस्म की गलतफहमी जरूर हुई है। मुझे अपनी बात स्पष्ट शब्दों में सीधे और साफ कह देनी चाहिए कि निश्चित रूप से इस नाटक के बनाने में वृष्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जब मैंने पहली बार आगरा भाषा ड्रामा कराया और खेला था बहुत पहले सन 1954 में, तब तक न तो मैंने वृष्ट के बारे में पढ़ा था न मेरी उनसे कोई भेंट हुई थी। जब मैंने 70 में दूसरी बार आगरा बाजार बनाया तब मैं उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुका था और व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता भी था, और अब मुझे लगता है कि मेरे नाटकों में ब्रेस्ट की तकनीक से समानता और लगाव है। बस इतना ही, ब्रेस्ट की तकनीक से मेरे प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। इस बात की अहमियत को समझना जरूरी है कि ब्रेस्ट के सर्वव्यापी और सर्वस्कृत सिद्धांतों के बरक्ष हबीब तनवीर का मुहावरा नितांत मौलिक और एक गहरी रंग दृष्टि का परिणाम है जो पूरी तरह अपनी ही जमीन से उगा हुआ है। हबीब तनवीर अपनी ही जमीन से उगे ऐसे रंगकर्मी हैं जो नए नाट्य मुहावरों के लिए किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि आज के समाज की स्थितियों, वातावरण और मान्यताओं से ताकत हासिल करते हैं। उनका यह मुहावरा विशुद्ध भारतीय है, मौलिक है। अगर उसे दूर तक देखने की कोशिश करें तो उनका यह मुहावरा हमें नाट्यशास्त्र में वर्णित लोकधर्मी परंपरा से अनायास जोड़ देता है। मूल बात यह है कि आगरा बाजार की 1970 में हुई प्रस्तुति में अभिनय और संदर्भ में उन्होंने कौन से नवीन प्रयोग किए, ऐसे प्रयोग जो अंततः उनके रंगकर्म की रीढ़ की हड्डी की तरह स्थापित हुए। सबसे पहले भाषा की बात। आगरा बाजार में प्रयुक्त संवादों की भाषा में कई स्तर हैं। बाजार के बीच आम आदमियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा ठीठ आंचलिक भाषा है, लेकिन उसकी रवानगी उसकी सबसे बड़ी खसूसियत है। किताबों की दुकान पर अदीबों और शायरों की जुबान का अंदाज नहायत अदब और कायदे की नफासत की लिए हुए है। पतंग की दुकान पर बाई जी के कोठे पर बोली जाने वाली जुबान का मुहावरा उस वक्त के शौकीन और अय्याशी परस्त लोगों का मुहावरा है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ अंदाज को एक नाटक में इस तरह पिरोना कि उसमें कतई कोई पैबंद नजर न आया और उसका समूचा असर उस माहौल की रूह को बरकरार रख सके, एक बहुत बड़ी चुनौती का काम था। अलखनंदन को दिए गए एक इंटरव्यू में हबीब तनवीर ने आगरा बाजार की भाषा के बारे में कहा, आगरा बाजार में मैंने दिल्ली की उर्दू बड़ी मेहनत से हासिल करके लिखी। मिर्जा फरहतुल्ला बेग की दिल्ली की आवाज़ें एक किताब है। इसमें ये बेचने वाले, कटोरे वाले, ज़ीरा पानी बेचने वाले किस तरह से बोली लगाते हैं, तो उसकी भी खूबसूरती करखंदारी भी उसके अंदर। वह दिल्ली की भाषा के बारे में छोटी सी किताब है, तो उसमें से बहुत सारे पैसेज लिए, उनका इस्तेमाल किया। तो आगरा बाज़ार की बोली वह और किताब की दुकान में जो ज़ुबान है वह है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो किताब आब हयात लिखी है। उर्दू लिटरेचर की हिस्ट्री, जो बड़े ज़बरदस्त स्टाइलिस्ट थे और उनकी ज़ुबान का बड़ा गहरा असर मुझ पर शुरू से तालिब इल्मी के ज़माने से था, तो उस अंदाज की मैंने ज़ुबानी लिखी है। आगरा बाज़ार में भाषा के संरक्षण को बनाए रखने के लिए ज़रूरी था कि उनके उच्चारणों में पूरी शुद्धता बरती जाए। आगरा बाज़ार के ज़्यादातर दृश्यों में तब तक नया थिएटर के छत्तीसगढ़ी कलाकार अपने अभिनय की सहजता और लय ताल की महारत में उसे अपनी खासी जगह बना चुके थे। वही इस नाटक के केंद्रीय तत्व थे, लेकिन दूसरे दृश्यों के लिए उन्होंने शहरी अभिनेताओं को चुना। उनके शहरी अंदाज के अभिनय और उसकी औपचारिक अभिनय पद्धति से संभ्रांत कहे जाने वाले वर्ग की बोलचाल और तौर तरीकों और नफासत को जिस तरह पेश किया, उससे आगरा बाज़ार और ज़्यादा खिल उठा। 1970 में हबीब तनवीर की आगरा बाज़ार में नया थिएटर की आंचलिक अभिनेता मंडली के अतिरिक्त राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किए कुछ युवा अभिनेता भी थे, जिनमें सविता बजाज, देवेंद्र राज अंकुर, रणजीत कपूर और रघुवीर यादव जैसे मजे हुए कलाकारों के नाम उल्लेखनीय हैं। उस प्रस्तुति में अनेक प्रशिक्षित रंगकर्मियों को हबीब तनवीर की निर्देशन पद्धति को देखने समझने का अवसर तो मिला ही है, लेकिन वे स्वयं भी अभिनय की एक नितांत नई प्रयोगधर्मी शैली के अनुभव से गुजरे। यह अनुभव उनके तथा दर्शक वर्ग के लिए यादगार बन गया। देवेंद्र राज अंकुर ने अपने उस अनुभव का जिक्र इन शब्दों में किया है। 1970 में मुझे हबीब तनवीर के साथ काम करने का मौका मिला। आगरा बाज़ार की पुनर्प्रस्तुति के पूर्वाभ्यास से लेकर उनके 17 प्रदर्शनों तक बतौर एक अभिनेता उनकी निर्देशकीय रचना प्रक्रिया को भी निकट से जानने का अवसर मिला। आगरा के मशहूर शायर नज़ीर अकबराबादी की 16 नज़मों के माध्यम से तत्कालीन समसामयिक सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण का डॉक्यूमेंटेशन किया गया। हयवदन, घासीराम कुतवाल या जुगकुमार स्वामी जैसे नाटकों से लगभग 15-20 बरस पहले ही आगरा बाज़ार में लोक तत्वों से भरपूर एक शैली को खोज लिया गया है। इस दृष्टि से आगरा बाज़ार को हिंदी रंगमंच की पहली लोक प्रस्तुति होने का श्रेय दिया जाना चाहिए। हबीब तनवीर ने यहाँ किसी प्रदेश की विशेष लोक शैली का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि कथक की सामाजिकता में से वह शैली अपने आप ही उभर कर सामने आ गई। ककड़ी, पतंग, चूहा, बंदर, वेश्या, छैला, इन विविध विषयों पर लिखी गई नज़मों ने स्वयं ही नाटक को लोक भूमि से जोड़ दिया। आगरा बाज़ार अभिनेताओं के समूहन की दृष्टि से भी अद्भुत एनसिम्बल था। बठिंडा के दो फकीर मुख्य गायकों की भूमिका में छत्तीसगढ़ के बहुत से लोक अभिनेता विविध भूमिकाओं में विधिवत प्रशिक्षित और अंततः शौकिया कलाकारों को भी मिलाकर की गई थी वह प्रस्तुति। इस नाटक की एक बड़ी विशेषता और भी है। हबीब तनवीर की पुत्री नगीन जब मुश्किल से 4-5 वर्ष की थी, तो बंदर नचाने वाले के बंदर की भूमिका में पहली बार मंच पर उतरी थी। उस छोटी सी बालिका ने बंदर के हाव भाव और मुद्राओं तथा भंगिमाओं को इतने सहज और कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया था जिसे उस प्रस्तुति के दर्शक कभी भूल नहीं पाएंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व प्राध्यापक सुब्बा राव ने इस प्रस्तुति की रंगमंच सज्जा की थी, जो प्रस्तुति की मूल अवधारणा के अत्यंत अनुकूल थी। साथ ही वामदेव ने रूप सज्जा मेकअप का दायित्व बखूबी निभाया। पिछले 50 वर्षों में आगरा बाज़ार देश विदेश में अनेक बार मंचित किया जा चुका है। हर बार कुछ नए अभिनेताओं का समावेश होता है और हर बार आगरा बाज़ार दर्शकों को एक नई आह्लादकारक अनुभूति से भर देता है। सन 2005 के भारत रंग महोत्सव में उसके पुनर्प्रस्तुतिकरण तक में यह तत्व स्वतः सिद्ध होकर उभरा है। अब हबीब तनवीर का आगरा बाज़ार केवल एक कालजयी प्रस्तुति तक ही सीमित नहीं रहा, भारतीय रंगकर्म के अध्येताओं और रंगकर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रसंग बन चुका है, जिसके आधार पर समकालीन भारतीय रंगमंच की विकास यात्रा को बखूबी जांचा परखा जा सकता है। देवेंद्र राज अंकुर का यह कथन इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आश्चर्य है कि जब 50 के दशक में हबीब तनवीर ने आगरा बाज़ार की पहली प्रस्तुति की, तो किसी ने उसका इस बात के नोटिस नहीं लिया कि जिस भारतीय रंग शैली की अपने देश को ज़रूरत थी, हबीब तनवीर ने उस नाटक के लेखन और प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उस वक्त तलाश कर ली थी। भारतीय रंगमंच में भारतीयता अथवा उसकी अपनी निजी पहचान शैली और स्वरूप का डंका पीटने वाले नारों और मुहावरों का जन्म भी नहीं हुआ था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि जिस दौर में भारतीय रंगमंच पश्चिम के तथाकथित यथार्थवादी प्रभाव में लेखन एवं प्रस्तुति के स्तर पर सक्रिय था, उसी क्षण हबीब तनवीर अपने नाट्यलेख के साथ एक ऐसी रंगशैली की तस्वीर पेश कर रहे थे जो बाद में भारतीय रंगमंच में मील का पत्थर साबित हुई। नज़ीर के नज़रिए पर हबीब तनवीर की कैफियत के रूप में आगरा बाजार के नाट्य प्रयोग को देखा जाना चाहिए। हबीब तनवीर ने आगरा बाजार की प्रस्तुति के जरिए जिस मुहावरे की शुरुआत की, अंततः वही उनके समूचे रंगकर्म को दिशा देने वाला मंत्र सिद्ध हुआ।